ایسا کیوں ہوتا ہے جسے درد بھی برداشت نہیں ہوتا؟ اس کے لیے ہی ستم کا انتہین سلسلہ نصیب بن جاتا ہے۔ بغل کے کمرے میں ہیم بھرتی ہے، پترکار ہے، بہت سمویدنشیل، سچا، دنیا میں اکیلا ہے اس لیے اپنی ہی دھن میں رہتا ہے۔ ماں کی اچھا ہوئی اس سے ملا جائے، دو دکھی لوگوں کا ملنا ہی زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ زخم بھرے یا نہیں، تھوڑی راحت ضرور محسوس ہوتی ہے۔ ہیم شاید باتھ روم میں تھا، دروازہ کھلا تھا اور اس کے بستر پر ایک ڈائری بھی۔ پہلی پنکتی ہی بیماری سے شروع ہو رہی تھی، ماں اسے پڑھنے کی اچھا کا سمورن نہیں کر پائی۔ لکھا تھا، آدمی بیمار ہے یا سمے ہی بیمار ہو گیا ہے، جس کے نبض پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، کوئی بتانے والا نہیں کہ اس درد کی دوا کیا ہے۔ سمے کا ارتھ اس دیش سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ دیش کی صحت بہت اچھی نہیں ہے، وہ کسی اسپتال، کسی ٹراما سینٹر بستر پر نہیں پڑا ہے، مگر ہے بیمار۔ کسی کو فکر نہیں، اس دیش میں کوئی چیز اپنی جگہ نہیں، روٹی چاہیے وہ نہیں، انصاف کی سانسیں پھول رہی ہیں، ایمانداری کوما میں، موت کا بھی کوئی پل ہو سکتا ہے، سچائی کو کینسر ہو گیا ہے، اسے مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آزاد دیش میں سب آزاد ہیں، لیکن حقیقتاً ہر کوئی اپنی ہی آزادی کا غلام بن گیا ہے۔ یہ نئے ڈھنگ کی غلامی ہے جو غلامی لگتی بھی نہیں، اور جو حالات ہیں اس کا مطلب آزادی ہوتا نہیں۔ ارونا شانباگ کو اچھا مرتیو کی اجازت نہیں، جس کے مرنے پر رونے والا کوئی نہیں، جس کے نہ جینے کا مطلب ہے نہ مرنے کا۔ ویسے بھی جن کے سپنے مر جاتے ہیں، ان کے دھرتی پر بنے رہنے کا کوئی اوچتیہ نہیں رہ جاتا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلتا ہے، ہونٹوں پر مسکان پھیل جاتی ہے۔ ارے آنٹی، کب آئیں؟ تمہاری ڈائری بنا تم سے پوچھے پڑھ رہی تھی۔ ماں نے اس پرشن کا اتر دینا جیسے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ڈائری نہیں، سچائی کا دستاویز ہے۔ اس میں ویکتی نہیں، سماج اور دیش ہے۔ زمین سے جڑے لوگوں کی سوچ آسمان جیسی ہوتی ہے، اور ان کا کیا جو زمین میں دھستے ہی نہیں، اس میں دفن ہو جاتے ہیں، جو کہیں کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتے۔ نیتی، اپنا اپنا نصیب، نہیں مانتا نصیب کو، تقدیر سے تدبیر بڑی ہوتی ہے۔ مجھے دیکھ کر بھی کیا یہی بات تم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ آنٹی، آپ میرے لیے ایک ایسا پرشن ہے جس کا میں اتر ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوں۔ یہ تمہارے پیشے کا دوش ہے، تم پترکار لوگ سوال بہت اچھالتے ہو، بڑا آسان ہوتا ہے سوال کرنا، جب اس کا جواب تلاشنا پڑے تو پتا چلتا ہے جواب کی کھوج میں گوتم کو بدھ بننا پڑتا ہے۔ سانسوں کی ڈور سے بندھے شریر کو گھسیٹنا، نرک کی یاتنا جھیلنے سریکھا ہوتا ہے۔ ماں کو اسپتال سے باہر اکثر ایک کتا دکھائی دیتا ہے، اس کی پچھلی ٹانگ ٹوٹی ہے، سر پر ایک بڑا گھاؤ مواد سے بھرا، وہ چل نہیں پاتا، بمشکل رینگتا ہے۔ اس کتے کو جیوت نہیں کہا جا سکتا، مرا بھی نہیں مانا جا سکتا۔ ماں کو اس پر ترس بھی آتا ہے، اس کا کوئی علاج کیوں نہیں کرتا؟ وہ زندہ ہی کیوں ہے، مر کیوں نہیں جاتا؟ ماں نے اس کتے کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا، تکلیف سے لبریز، مکتی کی چاہت سے بھری بجھی بجھی تھکی آنکھیں۔ وہ گھائل اور لاچار کتا خود مرنے کی جگت بھی تو نہیں کر سکتا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ بستر پر پڑے راج کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اچانک اس مریل گھائل کتے کی بے بس آنکھیں دکھائی دینے لگ جاتی۔ درد سے مکتی کی چاہت لیے، کسی نے کہا، سنجے لیلا بھنسالی کی فلم گزارش آئی ہے جو اچھا مرتیو پر آدھارت ہے، اسے لگا یہ فلم اسے دیکھنی چاہیے، وہ گئی بھی۔ فلم کو دیکھتے ہوئے وہ بہت روئی تھی۔ ایشور کیا واقعی جادوگر ہے؟ کیا جادو کا مطلب منورنجن ہوتا ہے؟ ایسا جادو کس کام کا جو کسی کے ہت میں نہ ہو؟ لوگ کتھاؤں کی طرح کوئی جادوگر اس کو مل جاتا جو اس کے راج کو ٹھیک کر دیتا۔ روتے روتے ماں کو کب نیند آ گئی پتا ہی نہیں چلا، من کا دوندو سوپن میں ڈھل گیا۔ راج ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، آنسوؤں سے بھرا چہرہ، اس کی زبان سے ہی نہیں پورے وجود سے ایک فریاد پھوٹ رہی ہے، ماں، ماں تو اتنی سوارتھی کیوں ہو گئی ہے؟ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا ہے، لاش کی طرح تیرے سامنے پڑے رہنا سہن نہیں ہوتا ہے، ہر پل تجھے روتے دیکھنا بھی اسہنیے ہو چلا ہے۔ موہ سے باہر نکل، موہ سے بڑا سوارتھ دنیا میں کچھ نہیں۔ ماں، ماں تو اتنی سوارتھی کیوں ہو گئی ہے؟ تو چاہتا کیا ہے
मुक्ति।
किस किस से?
दर्द और बेशक इस देह से।
मुझे क्या करना होगा?
मैं लाचार हूं। तू तो नहीं ना। प्लीज मम्मी किल मी। प्लीज मम्मी किल मी। किल मी मम्मी। प्लीज।
नहीं। अरे ये सपना था। सपना टूटता है, सामने राज अचेत लेटा है जैसे पिछले 7 सालों से। वो आगे बढ़कर उसका करवट बदलती है, सपने की बातों को झटकने की कोशिश, लेकिन ये सपना उसे बार बार आने लगा। रोते बेटे की एक ही गुजारिश, प्लीज मम्मी किल मी, प्लीज मम्मी किल मी। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि ये फरियाद जागते हुए भी दिमाग की दीवारों पर दस्तक देने लगा। कहीं राज यही तो नहीं चाहता? क्या मालूम उसकी यही इच्छा हो। दिल पर पत्थर रखकर उसने बेटे की इच्छा मृत्यु की याचिका अदालत में दाखिल की। महीने भर बाद इच्छा मृत्यु को अपराध और समाज हित में अनुचित बताते हुए अदालत ने अपील ठुकरा दी। मां परेशान सोचने लगी, किसी जमाने में इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता था कठिन तपस्या के बाद, मगर आज वो अपराध है। मरने का अधिकार नहीं, जीने के हालात नहीं, इन दोनों के बीच फंसी जिंदगी। कानून की जटिलताएं, आत्महत्या और इच्छा मृत्यु एक नहीं, भले ही दोनों में मृत्यु का वरण है, अदालत के सामने दो मुद्दे, जीवन के अधिकार को कानूनी मान्यता, इच्छा मृत्यु भी आत्महत्या के दायरे में, आत्महत्या अपराध है, इस आधार पर इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दी जा सकती। परेशान मां बगल के कमरे में चली गई हेम के पास। वो उसे देखकर मुस्कुराती है। जब दर्द हद से गुजर जाए तो वो किसी आवरण से नहीं ढक पाता, मुस्कुराहट से भी नहीं। हेम बोला, अदालत ने मेरे बेटे की इच्छा मृत्यु की अपील ठुकरा दी है। कहा है मरण का वरण अपराध है। गलती अदालत या व्यवस्था की नहीं, हमारी है आंटी। मतलब अगर मरण का वरण अपराध है तो हम महामूर्ख हैं जो अपराध करने की इजाजत उस व्यवस्था से मांग रहे हैं जो सबसे बड़ा अपराधी है। भूख से मरते लोग, लू शीत लहर और बाढ़ में मरते लोग, साल दर साल विदर्भ में लाखों किसानों की खुदकुशी, कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? अकबर का ऐलान, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। पता है आंटी, 1984 के दंगे में 4,000 लोग, 2002 के दंगों में भी हजारों मारे गए। इस देश में जो ईमानदार हैं, उन्हें भ्रष्टाचार मारती है हर रोज हर जगह। मेरे सामने देश का बदरंग मानचित्र मत रखो, साफ साफ बताओ अब मैं क्या करूं? आप तो उस राह पर चल पड़े हैं जिस पर चलने की हिम्मत आज तक किसी मां ने नहीं की होगी। एक मां अपने बेटे की मौत की फरियाद कर रही है। दरअसल आप उस मकान में रहने की अभिशप्त हैं जो बंद गली का आखिरी मकान है। आगे का रास्ता बंद है, कहीं लिखा नहीं है, मगर मान लीजिए कोई भी रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं होता। अंधेरे में भी चल पड़ो तो रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। क्या करेंगी आप? अंधेरे में चलूंगी, यानी मैं राष्ट्रपति के पास अपील करूंगी। उसी राष्ट्रपति के पास जिनके पास पहले से कई आतंकवादी और खूंखार अपराधियों की दया याचिकाएं सालों से सड़ रही हैं। फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग, वे मृत्यु से बचना चाहते हैं इसलिए फरियाद की है। आपको बेटे की मौत चाहिए, मंजूरी किसी को नहीं। बहरहाल परसों मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज ले रहा हूँ। अब वही रिपोर्टिंग, घूम घूम कर लोगों से मिलना। आपको अपनी कुछ रिपोर्टिंग मेल करूंगा। ऐसा पहली बार हुआ कि हेम की बातें माँ को अच्छी नहीं लगी। शायद दूसरी तरह की अपेक्षाएं रही होंगी। उजालों की उम्मीद ने अंधेरे को और गहरा कर दिया। सब कुछ जज्ब करती हुई वो बेटे के पास लौट आई। 2 महीने बाद वो राष्ट्रपति के सामने थी बेटे की इच्छा मृत्यु के साथ। संयोग से राष्ट्रपति महिला थी। एक तीखा सवाल, क्या ये आपका अपना बेटा है? जी, ऐसा होता नहीं है। मगर है। हैरत, दुनिया का आठवां नहीं पहला आश्चर्य, मैं भी माँ हूँ। पता नहीं इसे आपको साहस कहूँ, पागलपन कहूँ या फिर कुछ और, माँ की ममता तो नहीं कह पाऊंगी। हाँ, आप जहाँ खड़ी हैं वहां से मेरा दर्द नजर नहीं आएगा। कुछ भी कहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। हाथ जोड़कर यही विनती है कि मेरे बेटे को मौत बख्श दें। राष्ट्रपति कुछ नहीं बोली। आंखों में हैरत, हैरत में नमी, नमी में पता नहीं कैसे कैसे तैरते भाव, उनमें से एक माँ की ममता को कटघरे में खड़ा करने का भाव भी। कानून अपने ढंग से काम करता है, व्यवस्था की अपनी चाल होती है। इनके बीच जकड़ा आदमी अपनी बदहाली को नियति मानने को मजबूर। माँ का अथक संघर्ष जारी था। वो उस चौखट से टकरा रही थी जहां से उसे कुछ हासिल होना मुश्किल था। मंदिर मस्जिदों में जाना उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ईश्वर पर भरोसा भी नहीं रहा। जो इतना क्रूर, तटस्थ, संवेदनहीन और लाचारी का बुत बना हो, वो हमारे देश की सरकार या व्यवस्था तो हो सकती है, ईश्वर नहीं, माँ ऐसा सोचती। लेकिन क्या किया जाए कि वे इन्हीं पत्थरों में संवेदना की नमी भी ढूंढ रही थीं। कानून की मोटी किताबें, घुमावदार उलझी परिभाषाएं, धाराएं, इन सब के बीच वो अपने लिए जगह तलाश रही थीं। वो वहां खड़ी होकर चीख रही थीं जहां बोर्ड पर लिखा था, यहां आवाज करना मना है, जो कि होना ही था। राष्ट्रपति ने उसके बेटे की इच्छा मृत्यु को मंजूरी नहीं दी। एक टिप्पणी जड़ दी, हमारी संवेदना आपके साथ है, लेकिन क्रूरता की इजाजत देना संभव नहीं। बेहद गुस्सा आया था माँ को। कैसी संवेदना, कैसा साथ? क्या क्रूरता कई बार बदली हुई परिस्थितियों में अपनी परिभाषा के बाहर नहीं आ जाती? प्रसव वेदना से गुजरना भी असहनीय दर्द को झेलना होता है, बहुत तकलीफ दे। क्या उसे भी क्रूरता कहा जा सकता है जो पति और बच्चा देता है? नहीं, ये पीड़ा मुक्ति का द्वार खोलती है। बच्चा गर्भ के अंधेरों से निकलकर नई दुनिया में आता है, उजालों के संसार में। डॉक्टर और उनका विज्ञान कुछ भी कहे, अगर उनका बेटा सपने में आकर कह रहा है कि उसे दर्द हो रहा है तो हो रहा है। मुझे उसकी मुक्ति के लिए एक बार फिर प्रसव वेदना से गुजरना होगा। उन दिनों नवरात्र चल रही थी। दुर्गा की प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित की गई थीं। एक प्रतिमा अस्पताल परिसर में भी थी। शाम को न जाने क्या सोचकर माँ वहां गईं। एक जमाने बाद दुर्गा की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़े, प्रार्थना की, कुछ मांगा। गेट के बाहर वो मरियल कुत्ता भी दिखाई दिया, मुक्ति की चाह में रेंगता। चेहरे पर बेहद गंभीरता और सख्त भाव लिए वो बेटे के कमरे में लौट आई। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, एक तूफान सा। माँ ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी, खुद बेटे के बिस्तर पर चढ़ गईं। सालों से अचेत पड़े बेटे के सिर को गोद में रखा, उसके माथे को सहलाती रहीं, उसे चूमती रही। उस क्षण को याद किया जब 30 साल पहले उसे नवरात्रि में ही जन्म दिया था। अचानक वो उस प्रसव वेदना की मनोदशा में पहुंच गईं। आंखों में वही दर्द, चेहरे पर वही टीस, सब कुछ 30 साल पुराना, राज को जन्म देते वक्त जैसा। फिर न जाने क्या सोचकर उसने बेटे के बदन से सारे वस्त्र उतार दिए। यही काम खुद के साथ किया। अब बेटे का सिर उनके दोनों जांघों के बीच था और माँ के एक हाथ में। फिर अगली सुबह अस्पताल के लोगों को राहत देने वाली थी। अजीब सी राहत, दर्द में लिपटी, उदासी में डूबी, तरह तरह की बातें। राज ने अपने दर्द से मुक्ति पा ली। अंतहीन इंतजार का अंत हो गया था। पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं समझी गई। अस्पताल के कुछ लोगों ने कल माँ को दुर्गा के सामने प्रार्थना करते देखा। उसने उनकी प्रार्थना सुन ली। जो काम कानून, सरकार और व्यवस्था नहीं कर सकी, उसे नियति ने कर डाला। बातें थी, बातें इसी तरह होती हैं, पानी पर लाठी पीटने सदृश। लेकिन माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अस्पताल के लोगों ने उन्हें बहुत तलाशा, वो कहीं नहीं मिली। अलबत्ता उनका लैपटॉप उसी कमरे में था, उसे ऑन किया गया। क्या पता उसमें कोई जानकारी हो। सीधे माँ का जीमेल अकाउंट खुल गया। उसमें एक मेल आया था हेम का। जस्सी ने उस मेल को खोला। परेशान आंटी, प्रणाम। मैं विदर्भ में आ गया हूँ, जहाँ पिछले 10 सालों में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। अभी मेरे सामने 5 लोगों वाले परिवार के मुखिया की लाश पड़ी है। अब इस परिवार का क्या होगा? मुआवजा मिलेगा? 1,00,000 रुपए। यही राशि पहले मिल जाती तो आत्महत्या की नौबत क्यों आती? यहां आकर मैंने देखा, आत्महत्या और हत्या का फर्क मिट गया है। ये आत्महत्या नहीं, हत्याएं हैं, हत्याएं जो सरकार कर रही है और जो अपराध की श्रेणी में भी आता है। मगर किसी की क्या मजाल कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर उस पर हत्या का मुकदमा चलाए। लेकिन यही सरकार, यही व्यवस्था तेरे लाश बने बेटे को इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं देगी। आज का अखबार तो देखा होगा, एक युवक ने हाईकोर्ट के सामने इसलिए आत्मदाह कर लिया क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिला। हेमचंद पांडे। जस्सी ने व्यक्तिगत तौर पर राज के अंतिम संस्कार की तैयारी की। उसने हेम को मेल भी किया। राज की मौत हो चुकी है, माँ लापता है, उनको ढूंढने में मदद करे। वक्त ने करवट ली। जिंदगी के बिस्तर पर गहरे जख्म की सिलवटें पड़ गईं। ममत्व की बाढ़ ने संतुलन का बांध तोड़ दिया। पानी पागलों की तरह भटकने लगा। माँ का स्तन सूख चुका था। उसने शिशु को आवाज दी, प्रसव वेदना से तड़पने लगी। मालूम नहीं शिशु ने उसकी आवाज सुनी या नहीं, मगर वो सामने नहीं आया। माँ की पुकार जारी थी, शिशु दूर नहीं, उसके भीतर ही तो था जो अब बाहर नहीं आना चाहता था। गलियों में घूमता एक जोगी कबीर के पद गाता हुआ अपनी धुन में टहल रहा था। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे। प्रेम भारद्वाज की कहानी प्लीज मम्मी किल मी।
कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस, URL kathaa-paath.blogspot.in।